साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा।
ओम शांति। तो सभी बाबा के बच्चे, मीठी मीठी आत्माएं कहाँ आए हो? हाँ, अपने घर, बाबा के घर। सो अपने घर, पिता के घर आए हो, बाबा के घर आए। और हम सभी आत्माएं बाबा की विशेष सिलेक्टेड आत्माएं हैं, जो बाबा ने कहा है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा बाबा को पहचानती है और उसमें से हम हैं। हम सभी आत्माएं इतने तकदीरवान हैं कि जिनके लिए भक्ति में बहुत लोगों ने भक्ति की है, पुकारा है, तपस्या की है, कठिन तपस्याएं की है, कितने उपवास किए, आप में से भी कईयों ने किया होगा पर फिर भी इतना नहीं किया होगा, तो भी उन लोगों को दर्शन भी दुर्लभ है, भगवान के दर्शन भी दुर्लभ है। और हमें मिल गया है, मिल गया है, सबको मिल गया है, एक एक को मिला है। जिनको पर्सनली मिला है भगवान, वो हाथ ऊपर करे। सभी को मिला है, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया उसको नहीं मिला है क्या? मिला है। तो कितनी विशेष और वंडरफुल बात है, वंडरफुल बात है ना? एक एक के बाबा के बच्चों के एक एक के चेहरे को देख करके आनंद आता है और दिल से वही गीत बजता है, वाह 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 वाह। क्या होता है मन में? वाह 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 वाह। जब भी बाबा के बच्चों को देखते हैं तो लगते हैं कैसे सबने कैसे निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवान मिल गया है। एक एक को आप देखेंगे, बाबा के एक एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से निश्चय हुआ है कि मेरा बाबा हुआ है ना। सब जिनको भी पूछेंगे बोले हाँ मेरा बाबा, व्यक्तिगत निश्चय है। तो मैं कहती हूं कि बाबा जब मुरली चलाते हैं तो बाबा इन जनरल पर्सनल मुरली चलाते हैं। क्या करते हैं? इन जनरल, जनरल सबके लिए मुरली चलती है परंतु हर एक व्यक्ति के लिए, अपने लिए, खुद के लिए मुरली चलती। बाबा किसके लिए आया है? क्या कहेंगे हम? किसके लिए आया है? मेरे लिए। हमारे लिए भी नहीं, किसके लिए? मेरे लिए। जो भी नए आते हैं, नए भी आते हैं है ना, अभी हम लोग शिविर रखते हैं, नए बच्चे कहीं आए हैं अभी तो क्या कहते हैं? सच में बहन जी प्रोग्राम मेरे लिए रखा गया था, भगवान मेरे लिए आया है। आप देखो, तो यही बहुत बड़ी बात है कि अभी पूरे कल्प के अंत में, पूरा कल्प बीत गया, हमें पार्ट प्ले करते 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 अभी क्या हो गया? अंत हो गया। हम खो गए थे, हम अपने आप को भूल चुके थे। कोई खो जाता है बच्चा तो उसको ठिकाने लाना तो तब संभव होता है कि उनको अपना नाम पता हो, अपने पिता का नाम पता हो, तुम कहाँ रहता है तो कोई पहुंचाएगा है ना। कोई बच्चा जब खो जाता है तो पूछ भी तेरा नाम क्या है, अगर वो नाम बताता है, अपने पिता का नाम बताता है, तो कहाँ रहता है बताता है तो उसको पहुंचा दिया जा सकता है। पर हमारा तो क्या हाल हुआ था, हम नाम भी भूल गए, पिता को भी भूल गए, एड्रेस को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए। फिर तो बाबा को ही आकर के हमें ढूंढना पड़ा है। हमने बाबा को नहीं ढूंढा है, क्या हुआ है? हाँ, बाबा ने हमें ढूंढा है। तो एक होता है कि पिता ने हम बच्चों को फिर से इस संसार से सिलेक्ट कर लिया है, ढूंढ लिया है। हम तो खो गए थे, तो दुलछाई हो गए थे। बच्चा खो जाता है तो थक जाता है, मैला हो जाता है ना? खुद को भूल गया, सब कुछ भूल गया। अब बाबा ने आके हमें सिलेक्ट कर लिया, और जब सिलेक्ट किया तो बाबा ने क्या कंडीशन कहा कि भाई बच्चे, तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। क्या कहा? तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। बाबा ने कोई कंडीशन रखी कि भाई युवा ही आ सकते हैं, बहने ही आ सकती है, या भाई ही आ सकते हैं, या पढ़े लिखे ही आ सकते हैं, अनपढ़ नहीं आ सकते हैं, धनवान ही आ सकते हैं, गरीब नहीं आ सकते हैं, अथवा गरीब ही आ सकते हैं, धनवान नहीं आ सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन रखी? गोरे आ सकते हैं, काले नहीं आ सकते, ऐसा कुछ कहा? नहीं, कोई कंडीशन नहीं। क्या कहा बाबा ने हमें? तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। जैसे भी हो, कोई भी आयु का व्यक्ति है, भाई है, बहन है, न्यात जात, पढ़ा अनपढ़ा, गुणवान अवगुण वाला, कोई व्यसनी है, कैसा भी है, पर एक बार उसने अगर बाबा को कहा कि बाबा, तो बाबा क्या कहा है? मेरा बच्चा, जैसे हो वैसे। अब अपना तो बना लिया। बाबा ने किस लिए अपना बनाया है? बाबा ने किस लिए अपना बनाया है कि भाई बाबा आए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ, वर्षा देने, नई दुनिया बनाने, है ना? हमारे ही बुलावे पर, अंतर की हमारी पुकार सुन करके आए हैं। अब बाबा कहते, न केवल मैं तुम्हारा दुख दूर करता हूं, पर दुख की दुनिया को ही परिवर्तन करता हूं। दुख होता है, आता है, तो हमेशा कारण के साथ आता है। कई कारण बन जाते हैं दुख के। आज आप कलयुग का समय देखेंगे तो दुख बढ़ता जाता है, पर दुख बढ़ने के पहले दुख के कारण बढ़ते जाते हैं, है ना? अभी अनेक कारण बढ़ते जाते हैं। लोग कहते हैं दुनिया तमोप्रधान बन गई है। अभी कहते हैं कि भई ये पृथ्वी गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक कारण बताते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर उसके अनेक मुसीबतें दिखाई पड़ती है। मनुष्य का स्वभाव तमोप्रधान बन गया, कारण एक हुआ पर परिणाम अनेक है। अब बाबा आकर के दुख के कारणों को समाप्त करते हैं, दुख के कारण को समाप्त करते हैं। दुख का जो मूल कारण है, मूल कारण क्या है? आत्मा तमोप्रधान बन गई है। हम अपने आप को भूल गए हैं, है ना? अब फिर से जब तक आत्मा पर का परिवर्तन ना हो, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई इस काल चक्र में, सृष्टि चक्र में तीन शक्तियां काम करती है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। जब आत्मा सत्व प्रधान है तो प्रकृति भी सत्व प्रधान है ना? दोनों पार्ट प्ले करते 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 अभी अंत में आ गए तो क्या हो गया, आत्मा तमो प्रधान बन गई, इसलिए फिर प्रकृति के पांच तत्व भी तमो प्रधान बन गए। अब बाबा के क्या करते हैं, फिर से आत्माओं को सत्व प्रधान बनाते, आत्मा को सत्व प्रधान बनाते हैं तो प्रकृति ऑटोमेटिकली सत्व प्रधान बन जाती है। इसलिए मूल कार्य जो है बाबा का, बाबा हम आत्माओं को सत्व प्रधान बनाने आए हैं, पवित्र बनाने आए हैं, सात्विक बनाने आए हैं। अगर आत्मा पवित्र बन जाती है, अर्थात हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाता है, हमारी समझ में परिवर्तन आ जाता है, हमारी मान्यताओं में परिवर्तन आ जाता है, हमारे जीवन के सिद्धांतों में परिवर्तन आ जाता है, इसमें अगर बदलाव आ जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे कर्म और व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाएगा। और अगर हमारे कर्म और व्यवहार में परिवर्तन आ गया तो फल में भी परिवर्तन आ जाएगा, जैसा कर्म वैसा फल, परिस्थिति। तो ये रीत है परिस्थिति को बदलने की, स्वर्ग लाने की ये विधि है कि हमें अपना परिवर्तन करना है तो ऑटोमेटिकली ये दुख की दुनिया खत्म होके सुख की दुनिया आने वाली है। अच्छा, ये मूलभूत बात है, समझा। तो ये जो मूल कार्य है कि हम आत्माओं को फिर से सत्व प्रधान बनाना है, कैसे बनाया जाए, उसके लिए बाबा ने सबसे उत्तम विधि जो अपनाई है वो ये है कि बाबा ने हमें अपना साथी बना दिया, बाबा ने हमें अपना साथ दे दिया। क्योंकि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, चैतन्य है, उनको कैसे परिवर्तन करे, लोगों को भी किसी को समझ में नहीं आया कि व्यक्ति का परिवर्तन कैसे हो सकता है, आत्मा का परिवर्तन कैसे हो सकता है। उन लोगों ने बिचारों ने सोचा कि शायद गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे, है ना, परंतु ऐसा तो कभी होता नहीं है। ऐसा होता था तो दुनिया इतनी पतित बनती नहीं थी, किसी को पता नहीं चलता है। लोगों ने वैसे तो बहुत भक्ति की, भजन गाए, भक्ति की श्लोक बोले, लोग कहीं होते हैं जो गीता रोज पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, पढ़ते 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 भी तमो प्रधान ही बन गए तो उसका भी असर नहीं हुआ। इसीलिए अभी बाबा स्वयं सृष्टि पर आकर के स्वयं आए आकर के हमें अपना साथ दिया, है ना, साथ देना अर्थात हाजिर होना। तो बाबा का यहां आना अर्थात हमें अपना साथ देना, ये तो मैं समझती हूं कि इतनी वंडरफुल बात है, इतनी वंडरफुल बात है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था। बाबा कहते हैं मूली में कई बार कि आपको सपन में भी था क्या कि हमें भगवान मिलेगा और भगवान ऐसे आएगा, इनको हम इन आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, वो कभी हमारे से बात करेंगे, ऐसा कभी सोचा था किसी ने? असंभव, सोचा ही नहीं था। आज भी जिनको निश्चय नहीं है, जिनको परिचय नहीं है, इनको अगर आप बताओ तो क्या कहेंगे, पागल हो क्या, भगवान भी कभी आता है क्या, भगवान भी कभी मिलता है क्या, तुमको ही भगवान मिल गया, है ना। हमें याद है कि हम जब एकदम शुरू में बाबा के ज्ञान में आए और मधुबन बाबा से मिल करके वापस जा रहे थे ट्रेन में, छोटे थे उस समय उम्र में, ट्रेन में वापस जा रहे थे, नशा था एकदम, बाबा से मिलके जा रहे थे तो बहुत नशा था। हमारे सामने दो तीन साधु संत भी बैठे हुए थे, हम छोटे थे पर नशा बहुत था। बोला आप कहां से आ रहे हैं बहन जी, हम तो भगवान से मिलके आ रहे हैं। तो चौंक गए एकदम, भगवान से मिलके आ रहे हैं? उनका हाँ भगवान से मिलके आ रहे हैं। उनको लगा कि पागल हो गए कि क्या, लगा कि अच्छा, हंसने लगा, उनको लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। बोला भगवान से मिले, आपको भगवान मिल गया? तो हाँ मिल गया भगवान उसमें, हाँ मिल गया भगवान। तो क्या हमको मिलाएंगे? हाँ जरूर मिलाएंगे, जब हम मिल के आए तो आपको क्यों नहीं मिलाएंगे, हम आपको भी ला सकते हैं, परंतु उसके पहले क्या करना पड़ेगा, 7 दिन का लेसन करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, धारणाओं को करना पड़ेगा तो मिल सकते हैं। पर वो उनको समझ में आता नहीं है, तो उनको लगता है कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हम इतना तपस्या कर रहे हैं, हमने संसार छोड़ा है, सन्यासी बन गए, हमें भगवान नहीं मिला और वो फ्री बैठा था जो तुमको मिल गया, ऐसा उनको लगता है। तो किसी को ये संभव नहीं लगता कि भगवान भी कभी मिल सकता है। तो ये सारे कल्प में और सारे विश्व में है ना, सारे विश्व में और सारे कल्प का सबसे जिसके ना हॉट न्यूज कौन सा है, तो सबसे बड़ा न्यूज ये है कि भगवान धरा पर आया है, स्वयं भगवान धरा पर आया है, ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा समाचार है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक आत्मा को अपने साथ का अनुभव कराता है। कैसे अनुभव होता है साथ का, साथ का अनुभव कैसे होता है? हर एक को होता है, परंतु आप कितना समय साथ रहते हैं, जितना समय साथ रहते हैं उतना उसकी संग का रंग लगता है। क्योंकि आत्मा को सत्वप्रधान बनने का, आत्मा को पवित्र बनने का ये एक ही उत्तम उपाय है, बाबा को साथी बनाना अथवा बाबा के साथी बनना, दोनों है ना, बाबा को साथी बनाना अथवा बाबा के साथी बन जाना, दोनों यही एक उत्तम उपाय है आत्मा के लिए अपने आप में परिवर्तन लाने का। नहीं तो दुनिया में लोगों ने इस बात को असंभव कह दिया कि आत्मा के अंदर जो भी कमी है, कमजोरी है, विकार है, वो कभी जा ही नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए शास्त्रों में क्या कह दिया, हर एक के लिए जो सालों साल तपस्या करते, कहते भी विश्वामित्र ऋषि ने कितने साल तपस्या किया तो भी विकार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके, मोह पैदा हो गया मेनका को देख करके। दुर्वासा मुनि के लिए कहेंगे कितनी तपस्या की तो भी उसका क्रोध गया ही नहीं, ये कह करके हमको ये लोग समझाना चाहते हैं कि भाई किसी का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कभी जाता ही नहीं है। रावण को पता, इतना ज्ञानी था, इतना तपस्या करने वाला था, इतना दानी था, पर तो भी उसका अहंकार गया नहीं था। तो मुश्किल है, मुश्किल है। एक एक बात के ऊपर कोई कितनी भी मेहनत करता है, जैसे कहा कि सालों साल तपस्या करता है तो भी आत्मा से वो विकार जाते नहीं है, जाते नहीं है। और बाबा ने आकर के एक एक बच्चों को साथ का अनुभव करा के इतना सहज कर दिया कि हमें पता ही नहीं चलता है। लोग कहते हैं इतना मुश्किल है, और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कहता मुश्किल है। किसी को मुश्किल लगा है? बाबा के ज्ञान में आके बाबा की धारणाओं पर चलने के लिए मुश्किल लगा है कि सहज लगा है? जिनको सहज लगा है वो हाथ ऊपर करे। देखा, कोई भी देखे तो समझ सकता है कि कितना इजी है। यह है बाबा की हर आत्मा को पर्सनल हेल्प। क्या है? बाबा एक एक आत्मा को व्यक्तिगत रूप से मदद करता है, व्यक्तिगत रूप से साथ देता है। एक बार ऐसे हुआ कि एक बहन मिले हमारे से, ज्ञान में नई नई चल रही थी, ज्ञान में एक दो साल हुए थे, पक्के वैष्णव थे, पहले वैष्णव संप्रदाय में थे, और वैष्णव संप्रदाय में पक्के मीन्स खुद तो पक्की थी पर टीचर थी, वैष्णव संप्रदाय की टीचर थी, अर्थात गांव गांव में जाकर के वैष्णव संप्रदाय के लिए प्रचार करती थी, ऐसी एकदम सब कुछ समझने वाली थी। वो ज्ञान में आई तो मैंने कहा कि आपको क्या यहाँ अच्छा लगा, आप कैसे आए यहाँ ज्ञान में, क्यों आए? क्योंकि लोग, वैष्णव लोग भी छोड़ने नहीं देते जल्दी से, अपना कोई ऐसा पक्का होगा तो बंदे को जल्दी जाने नहीं देंगे। और ठीक, वो स्कूल की प्रिंसिपल थी, समझदार थी, इंटेलिजेंट थी, तो मैंने उसको पूछा कि आपको क्या यहाँ मिला, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती बहन, हम वैष्णव लोग भी अन्न की शुद्धता का तो पालन करते हैं, परंतु हम जैसे वो अधिक मास आता है तो चतुर्मास आता है, तो उसने अपना अनुभव सुनाया कि चतुर्मास आता है तो हम भोजन की शुद्धता की धारणा रखते हैं कि बाहर का कोई भोजन खाते नहीं है, प्याज लहसुन वगैरह नहीं खाते हैं, बाहर का भोजन नहीं खाते हैं, चार महीने के लिए चतुर्मास करते हैं। अच्छा, कहती है वहां फिर ऐसा होता है कि जैसे चार महीना पूरा होने आता है ना, तब से मन में संकल्प होता है कि अभी पूरा होगा तो फिर खाएंगे, अभी चार महीना पूरा होगा फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, एकदम मन उसमें लग जाता है। कहती है यहां आकर के जब हमने 7 दिन का कोर्स किया, तब से पता नहीं क्या अंदर में धारणा हो गई, प्याज लहसुन सब तो छूट ही गया पर बाहर की कोई चीज खाने का संकल्प भी नहीं आता है। कह रहे जरूर कोई ईश्वरीय शक्ति काम करती है, क्योंकि वो रियलाइज कर सकती थी, डिफरेंस महसूस कर सकती थी कि भक्ति में क्या पाया और ज्ञान में क्या पाया। बोला जरूर कोई शक्ति है जो आत्मा को अंदर से इतना भरपूर कर देती है, ताकतवान बना देती है, जो आत्मा की धारणा सहज भाव से हो सकती है। तो बाबा हम सबको फर्स्ट, पहले पहले ही हर एक आत्मा को अपना साथ और हाथ दे करके, है ना, कहते हैं भाई साथ और हाथ, हाथ अर्थात हेल्प, हाथ क्या कहते हैं हम, कि बाबा की जो मदद मिल जाती है आत्मा को, तो बाबा की मदद से आत्मा का मूलभूत परिवर्तन, बेसिक, इसको कहते हैं बेसिक परिवर्तन होता है। बेसिक क्या है? ब्राह्मण बन जाते हैं। बाबा हमें साथ दे करके, मैं तो कहूंगी तत्काल तुरंत शूद्र से ब्राह्मण बना लेते हैं। देख देख वंडर लगता है, नए नए बाबा के बच्चे आते हैं एकदम पक्के बन जाते हैं, बस बाबा तो ब्राह्मण बन जाते हैं। पवित्रता की धारणा तो ऐसे कर लेते हैं जैसे एकदम इजी है ना। ब्राह्मण अर्थात क्या? सबसे पहली बात, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत की पालना, शुद्ध भोजन, ये दो तो मिनिमम आवश्यकता है। और ऐसे धारण हो जाता है किसी को जरा भी मुसीबत लगती नहीं। अच्छा, ये तो हो गया, समझो एडमिशन मिल गया, है ना, शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए बाबा का पूरा साथ मिल जाता है और हम शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं। एक यात्रा पूरी हुई, दूसरी यात्रा क्या करने का? अभी दूसरी यात्रा शुरू होती है, कौन सी? क्या कहेंगे? ब्राह्मण से क्या बनना है? दूसरी यात्रा शुरू हुई ना, शूद्र डायरेक्ट देवता नहीं बन सकता, शूद्र समय क्या बनना पड़ता है? ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो बाबा हमारा हाथ पकड़ के हमें उस दुनिया से इस दुनिया में ले आते, हमारा हाथ पकड़ करके साथ दे करके हमें ब्राह्मण बना देता है। फिर ब्राह्मण से देवता बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक बार भगवान हमारा हाथ पकड़ता है, फिर हमें क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हाँ, हमें उनका हाथ पकड़ना पड़ेगा, समझा? शूद्र से ब्राह्मण बनाने बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा, अभी ब्राह्मण से देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उनका हाथ पकड़ना है, उनका हाथ पकड़ना है। उसको कहते हैं साथ, बाबा को साथी बनाना। अब हमारी बारी है। बाबा कहते हैं मुरली में कई बार कि तुमने मुझे पुकारा था और क्या कहा था? हे प्रभु, आप जब आएंगे तो मैं तुम्हारे पर वारी जाऊंगा, तन मन धन सब तेरा, फिर क्या लागे मेरा। बाबा ने कहा मैं सुन लिया तुम्हारी बात, तुमने जो पुकारा था वो मैंने सुना, तुम्हारी सुन करके मैं आया, है ना? अब किसकी बारी है? तुमने जो कहा था वो उसका पालन करो, वादा निभाओ, है ना? बाबा कहते मैंने मेरा वादा निभा लिया, अभी किसकी बारी है? अभी तुम्हारी बारी है, अभी तुम्हें वादा निभाना है। तो अभी अभी हमारा जो पुरुषार्थ है कि हमें बाबा को साथी बनाना है। कैसे साथी बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना? तो उसके लिए बाबा हमें रोज 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 समझाते हैं कि भाई आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मा को संपूर्ण पावन, पावन तो बन गए परंतु संपूर्ण पावन बनने के लिए, संपन्न बनने के लिए सबसे अच्छी विधि है बाबा को साथ रखना। सबसे अच्छी विधि है बाबा का साथ। बाबा का साथ अर्थात योग, है ना? बाबा को साथ रखना, इसका अर्थ क्या हुआ? योग। योग अर्थात बाबा को साथ रखना, बाबा को याद रखना, बाबा को साथ रखना, है ना? बाबा को साथ रखना अर्थात क्या होता है? अभी आप कहते हैं कि बाबा को याद करना अर्थात क्या होता है? हम बाबा के लिए सोचते हैं, है ना? अर्थ क्या है सहज? कि बाबा को याद करना अर्थात हम बाबा के लिए सोचते हैं कि भी बाबा के, मैं जो हूं जैसा हूं मुझे याद कर। तो हम सोचते भी बाबा बिंदु स्वरूप बाबा है, मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, ज्ञान का सागर है, क्या ज्ञान है, है ना? अभी गीत सुना था तो कहा कि भी जिसके संकल्प से चांद और सितारे चलते, वो थोड़ा भक्ति मार्ग जैसा है, परंतु जिनके संकल्प से ही परिवर्तन हो रहा है। आप जरा सोचो, थोड़ा चिंतन करो तो पता चलेगा कि एक बाबा आए हैं, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान, जिसको भगवान ईश्वर अल्लाह प्रभु लोगों ने बहुत कहा है, वो आए हैं और उनका संकल्प रखा है। इतने सब बच्चों के प्रति उनका संकल्प है क्या? परिवर्तन हो जाए। क्या है कि आत्माएं सभी, बच्चे मेरे सभी संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए, ये संकल्प है उनका, संकल्प है ना। तो उसके संकल्प से सब कुछ चल रहा है, सारे प्रोग्राम। हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, नयों के लिए प्रोग्राम करते हैं, भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, जो भी करते हैं वो किसके प्रति करते हैं? सभी आत्माओं के प्रति करते हैं। और किस आधार पर चलता है? उनके संकल्प के आधार पर चलते हैं। एक ही संकल्प, उनका ही संकल्प है, उनके आधार पर चलते हैं। तो अभी जितना हम हमारा संकल्प बाबा के प्रति जोड़ते हैं, अर्थात बाबा के लिए जितना आप सोचते हैं, जिसको ही योग कहा जाएगा, जिसको ही साथ कहा जाएगा, और ये वंडरफुल है कि जितना बाबा का संग होगा, जितना बाबा का साथ होगा, उतना आत्मा वैसी ही बन जाती है। आप जिसके बारे में सोचते हैं, आप जिसके बारे में सोचते हैं, उनकी सोच भी आपके पास आ जाती है। कोई क्रोध करने वाले व्यक्ति को अगर आपने मन में सोचते हो तो आपके मन में भी क्या आएगा? क्रोध ही आएगा। तो बाबा को, बाबा की एक एक बात को अगर आप विस्तार से चिंतन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल, ज्ञान का सागर है बाबा, ज्ञान का सागर है, समझो। तो कौन सा ज्ञान है बाबा के अंदर? कौन सा ज्ञान बाबा हमें देते हैं? जवाब सिंपल है, सिंपल हम जवाब दे देते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, 84 जन्मों का ज्ञान देते हैं, धर्मों का ज्ञान देते हैं, वो तो हमें पता है। परंतु इसका चिंतन करो कि इसका अर्थ क्या, कि बाबा हमें जैसे सृष्टि चक्र का ज्ञान की बात है तो सृष्टि चक्र का ज्ञान तो दिया, इसका अर्थ केवल ये नहीं कि सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, इसमें इतने जन्म, इसमें इतने जन्म, इसमें इतने, ये तो दिया, पर मूल ज्ञान क्या है, इसके अंदर छिपा हुआ ज्ञान क्या है, गुप्त ज्ञान क्या है? कि भाई बाबा ने ये समझा दिया कि तुम ये समझो कि दुख और सुख के मूल कारण क्या होते हैं। सत्ययुग त्रेता में सुख था तो उसका कारण क्या था? क्योंकि हम आत्माभिमानी थे, हम आत्माभिमानी थे, हम आत्माएं पवित्र थे, हम पवित्र, आप सोचिए पवित्रता अर्थात क्या, हम पवित्र थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, आप सोचिए संपूर्ण निर्विकारी, सभी सभी। इसलिए गायन क्या है, राम राज्य का गायन क्या है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार है, सभी राम है, सभी कृष्ण है। कहते मैं एक एक जहां हर बालक एक मोहन था और राधा एक एक बाला। हर व्यक्ति, आप सोचिए कि हमारे घर में रहने वाले या हमारे संगठन में हम जहां काम करते वहां अगर हर व्यक्ति में सब गुण है, सोचिए कि अगर हर व्यक्ति में सब गुण है, हर व्यक्ति अंदर बाहर एक है, हर व्यक्ति पवित्र है, हर व्यक्ति एक दूसरे का मान रखने वाले हैं, एक दूसरे को रिगार्ड देने वाले हैं, तो कैसा वातावरण होगा, कैसा वातावरण होगा, उत्तम होगा ना। तो स्वर्ग उससे क्या अलग है, वही तो स्वर्ग है, वही तो स्वर्ग है, वही तो करना है हमें। तो बाबा ने हमें ये एक आंतरिक समझ दी कि सुख का कारण कोई भौतिक उपलब्धि नहीं है, सुख का कारण कोई धन संपत्ति नहीं है, सुख का कारण किसी का अच्छा बोलना या दुख का कारण नहीं अच्छा बोलना, ऐसा नहीं है। ये बाहरी रूप से सब कारण है, मूलभूत कारण ये है कि अगर हम पवित्र है, आत्मा अगर पवित्र है, तो वो निश्चित रूप से सुख की अधिकारी है। और जब दुख शुरू हुआ तो भी क्यों हुआ? बाबा ने कहा भाई इसलिए हुआ कि तुम धीरे धीरे आत्मभान को भूल गए और देह भान में आ गए। देह भान में आने से हमारे आंतरिक समझ में परिवर्तन आता गया, हमें ऐसी ऐसी बातें अच्छी लगने लगी, शरीर की कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के हमें खाना अच्छा टेस्टी अच्छा लगने लगा, पहनना अच्छा लगने लगा, देखने में ये बहुत देखने में अच्छे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सुंदर है, अगली है, जो भी है उस हिसाब से हमारा टेस्ट बनता गया। समझा? हमने क्या किया, ऐसा टेस्ट बनता गया, इस प्रकार से हमारी मान्यता बनती गई, हमारा स्वभाव बनता गया, हमारा संस्कार बनता गया और हम केवल दुख के अधिकारी रह गए। ये ज्ञान बाबा ने क्या ज्ञान दिया, ये समझ दिया। आज भी हम इस समझ को परसेंटेज वाइज अपने जीवन में लेते हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान बाबा ने दिया। इसलिए बाबा कहते मैं, आपने शायद मूल्य में नोट किया होगा, बाबा कहते मैं किसी के अंदर को नहीं जानता हूं, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। आपके मन में, किसी एक के मन में क्या चलता है वो जानने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। क्या कहता है? मैं अंतर्यामी नहीं हूं परंतु मैं कौन हूं? ज्ञान का सागर हूं। दोनों में क्या अंतर है? अंतर्यामी अर्थात बाबा कहते मैं एक एक के मन को जानने की कोशिश नहीं करता हूं, परंतु इन जनरल मुझे पता है कि कौन सा व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या सोचता है वो जाने की जरूरत नहीं, क्या सोचेगा वो भी पता है। देह भान के वश व्यक्ति क्या सोचेगा, है ना? कोई देह भान वाला व्यक्ति है, उसके आगे पैसा आएगा तो वो क्या सोचेगा, उसके आगे व्यक्ति आएगा तो क्या सोचेगा, वो पता है। इसको ज्ञान कहते हैं, नॉलेज, ज्ञान। कोई व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस समय किस परिस्थिति में क्या सोचेगा वो उनको, वो पता है। इसको ज्ञान सागर कहते हैं। तो इन बातों को सोचने से, चिंतन करने से हमारे में भी वो ज्ञान आज, इसको साथ कहते हैं। ये कोई भौतिक साथ की बात नहीं है, परंतु ये सूक्ष्म संकल्पों के साथ की बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप मुझे जितना याद करेंगे, साथ मेरा निभाएंगे, जितना साथ निभाएंगे उतना आत्मा बहुत सहज रूप से, सरल रूप से अपना परिवर्तन कर सकती है। और अपने परिवर्तन का सुख पहले किसको मिलता है? मेरा स्वभाव अगर अच्छा है तो उसका सुख किसको है, किसको है? मेरे आजूबाजू वालों को है? नहीं, सबसे पहले सुख किसको है? मुझे ही है। सबसे पहला सुख मुझे है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम मुझे अपना साथी बनाओ। बाबा ने हमें अपना साथी बना लिया। कई बार बाबा हंसी में हमें पूछते हैं ना, आप मुझे ज्यादा याद करते हो कि मैं आपको ज्यादा याद करता हूं? क्या करता है, क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे हम? तो खुद कहे हम ही ज्यादा करते हैं, भले तो बाबा कितना भी कहे। बाबा कहते नहीं, पर तुम भूल जाते हो ना, मैं तो निरंतर याद कर सकता हूं, वो भूलने वाला नहीं है। मुझे याद है, एक हंसी की बात सुनाती हूं अनुभव की, बाबा की। मुझे याद है कि एक बार एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम होते रहते हैं तो बाबा को निमंत्रण तो देते हैं ना कि बाबा आपको तो हाजिर रहना ही है। तो मैंने कहा कि बाबा आपको तो हाजिर ही रहना है कांस्टेंट। ठीक है, रहूंगा ना। फिर क्या जवाब दिया? रहूंगा ही, जब तुम्हारी नजर मेरे पर पड़ेगी तब मैं वहीं होगा, आपके पास होगा। पर कब? जब आपकी नजर पड़ेगी तब। तो मैंने, मुझे बहुत समझ में आ गया कि सच्ची बात है। कोई व्यक्ति अपने घर में हाजिर होता है तो वैसे तो हम कैजुअली सब काम करते, फिर याद है कि वो है कि नहीं, बैठा है कि नहीं बैठे, देखते हैं तो बैठा है। जब तुम्हारी नजर पड़ेगी मैं हूं कि नहीं तो मैं होगा, अगर तुम्हारी नजर गई तो मैं गया, समझा? ऐसे होता है। तो इसलिए बाबा कहते आप मेरा साथ निभाओ तो मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आपको नहीं भूलना है, आपको नहीं भूलना है। तो बाबा हम सभी को संपन्न बना करके दूसरा सब्जेक्ट दे दिया है साक्षीपन के लिए। तो बाबा ने कहा है कि हमें बाबा संपन्न बना करके आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। आत्मा में शक्ति भरने का उपाय जैसे अभी कहा कि एक ही है कि हम सतत और निरंतर बाबा की याद में रहे, निरंतर बाबा के कार्य करते करते भी ऐसा अभ्यास करे कि हम कार्य करते हैं तो भी हमारी बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे, इसका हमें अभ्यास करना है। पर आप सबको पता है ना, हमारी बुद्धि कितनी बाबा के साथ रहती है वो आप सबको पता है, आप हम सबको पता है। अगर कोई कहे कि मेरी निरंतर रहती है बुद्धि बाबा के साथ तो कोई मानेगा? बाबा भी नहीं मानेगा, बाबा कहे नहीं, कौन कहता है रहती है, मैं भूल जाता हूं। कहते ना मुरली में कभी कभी ब्रह्मा बाबा, मैं भूल जाता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है निरंतर आप करते हो, नहीं होता है। तो उसके उपाय में बाबा ने कहा है हमें क्यों नहीं याद रहता है बाबा, हम क्यों भूल जाते हैं बाबा को, क्योंकि हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि बाबा को याद करने के सिवाय बाकी बहुत काम है दुनिया में, समझा? हम क्या समझते हैं कि बहुत काम है, कितने काम है, तो उन सब बातों में हम अपना जब ध्यान देते हैं तो हमारा मन भी किसमें लग जाता है, उसमें ही लग जाता है। और मन के लगने का आधार उस पर है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है ना, हम कितना उसको मेरा समझते हैं, मैंपन उसमें कितना समाया हुआ है, उतना आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसा क्यों करते है ना, जहां जहां मेरा होगा, कोई एक्स वाई जेड बच्चा अगर फेल हुआ आपको कुछ नहीं होगा, पर आपका बच्चा फेल हुआ तो आपको होगा, क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, क्या कितना अंदर में चला जाएगा, माइंड चला जाएगा ना। किसी का पैसा खो गया है आप थोड़ा अच्छा आपका पैसा खो गया ठीक है, तकलीफ तो होगा, आपका खो गया तो क्या होगा, आपको न चाहते हुए भी बार 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 वो संकल्प आता रहेगा। अभी भी कई भाई बहन कहते हैं जो पुराने पुराने अपना अनुभव सुनाते हैं, पुराने पुराने भाई बहन होते हैं, अच्छी तरह ज्ञान में चलने वाले होते हैं, तो भी कोई नियर बाय व्यक्ति का अगर मृत्यु हुआ तो कहते सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं, आत्मा तो चली गई फिर कुछ नहीं हो सकता है, पता है, पर तो भी मन से जाता नहीं है, मन में उनकी ही याद कांस्टेंट आती है और आंखों से आंसू बहता ही रहता है, क्या करे है ना। तो अंतर की गहराइयों तक जो मैंपन इस शरीर को मैंने अपना समझा है और इस शरीर के नाते हमने जिन जिन को मेरा समझा है वो जहां तक पक्का है अंदर में है ना, वहां तक बुद्धि उसमें ही लगी रहेगी, मैं और मेरे में। और जब तक उसमें बुद्धि लगी है तब तक बाबा में इतनी लग नहीं सकती है, इतनी परसेंटेज वाइज लगती है, इतनी नहीं लग सकती, भले गीत भी बजता है, हम शांत होके बैठ भी जाते हैं, दृष्टि भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अगर परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब हमारा कनेक्शन में कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो बाबा ने कहा कि अगर आप अपने स्वभाव में साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, साक्षी भाव, जिसको किसी ने कहा चॉइसलेस अवेयरनेस, जागृत रहना है परंतु चॉइस नहीं है, चॉइस अर्थात ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं है, ये जब तक है ना, ये जब तक है तब तक मन बाबा में लग नहीं सकता, क्योंकि हमारा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, हम इतने उसमें भाव से, लागणी से इतने अटैच हो जाते हैं इमोशनली, जो फिर बाबा बिल्कुल याद आता नहीं। ऊपर ऊपर से याद आता होगा तो भी अंदर से जो गहराई की चोट है वो जाती नहीं है, भरती नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभ्यास करते जाओ। कहते बाबा लंबे समय का अभ्यास की आवश्यकता होती है, लंबे समय का अभ्यास, अभी से थोड़ा थोड़ा। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो एकदम तो नहीं होता है, तो इसलिए बाबा कहते अभी से साक्षीपन की स्थिति का, साक्षी आपको पता है ना, आजकल दुनिया में हर बातों में साक्षी की साइन लेते हैं, साक्षी की साइन लेते हैं, जिसमें आपको कुछ बोलना नहीं है, करना नहीं है। और कहते हैं साक्षी जो होता है वो किसी का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है ना शायद, कोर्ट बोर्ड जहां पर भी साक्षी कोई रखते रहे, रिलेटिव नहीं होना चाहिए, संबंधी नहीं होना चाहिए, संबंधी साक्षी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए, हर संबंध को निभाते हुए हमें, बाबा ने जो हमें समझाया है उस बात को मन में लाते हुए साक्षी भाव को धारण करना है। और साक्षी भाव को धारण करने के लिए बाबा के जो ज्ञान की पॉइंट है वो ये है कि भाई ये पूरी दुनिया एक रंगमंच है। क्या है? पूरी दुनिया एक रंगमंच है और उसमें ये अविनाशी नाटक चल रहा है। हम सभी कौन हैं? इस नाटक के एक्ट, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से हर आत्मा इस नाटक में अपना पार्ट प्ले कर रही है। इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत, व्यक्तिगत हर एक आत्मा ने सतयुग से लेकर के संगम तक अपना व्यक्तिगत पार्ट प्ले किया है। व्यक्तिगत किया है ना, कोई दो आत्मा ऐसी है जिसे साथ साथ किया हो, कि हम सतयुग में भी साथ थे अभी भी साथ, ऐसा है कोई? कोई नहीं है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट, इस बात को सोचने का है कि भाई हमने तो ऐसे 84 जन्म लिए हैं, ये अंतिम जन्म है, 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में सब संबंधित है हमारे, वैसे ये भी है, पर मैं कौन हूं? आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इस बात को अगर जितना ज्यादा सोचेंगे, चिंतन में लाएंगे, तो जो बाबा कहते हैं वो साक्षी भाव, जिसको बाबा कहते क्या समझो क्या समझो सॉरी आत्मा आत्मा भाई भाई, सोच के देखो। अभी बैठे हो आप, कोई संबंधी को याद मत करो, कहां पर भी हम कौन है? सभी यहां पर आत्मा आत्मा भाई भाई, सभी सभी समझो, इस हॉल में बैठे हैं तो भी इस हॉल की सभी आत्माएं हम आत्मा आत्मा भाई भाई। कल्प पूरा हुआ है, कल्प पूरा हुआ है और हम संगम में अभी कल्प के अंत में बैठे हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सभी बिंदु 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 सभी आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट है और हमें वापस घर जाने। बाबा ने कहा मुली में कहा कि हमारे एक ही संबंध है, एक बाप और फिर बाकी सभी बच्चे, एक बाप और बच्चे और कोई संबंध नहीं है, और कोई संबंध नहीं है। हाँ बाकी जो पार्ट प्ले करना है वो पार्ट कैसे प्ले करना है, साक्षी बन करके, साक्षी बन करके अर्थात कोई मेरा तेरा नहीं, जिसको हम कोई फेवरिज्म नहीं, ये मेरा है इसलिए थोड़ा प्लस माइनस, ये मेरा नहीं है इसलिए नहीं। आप सोचिए इस बात को समझ सकते हैं ना कि कोई भी है, कोई भी है, इनके साथ हमारा जो भी व्यवहार होगा, हमारा संबंध, हमारा व्यवहार, हमारा बोल चाल, वो सभी कैसा होगा, वैल्यू बेस्ड, सैद्धांतिक रूप से होगा। अगर हम साक्षी दृष्टा नहीं है तो हमारे नजदीक वाले होंगे जिनके साथ हमें स्नेह होगा उनका, उनके साथ का व्यवहार, और स्नेह नहीं है उनके साथ का व्यवहार, दोनों में अंतर आ जाए। तो हम बाबा की श्रीमत पर पूरा तब चल सकते हैं कि हमारे मन में हम साक्षी भाव को पैदा करें। वही बाबा का हेल्पर राइट हैंड बन सकता है, वही बन सकता है जो चॉइसलेस है ना, उसको जहां रखो जैसे रखो जो करवाओ परफेक्ट करेगा वो व्यक्ति, ही परफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आवश्यक है अंतिम समय में स्थिति को अच्छी बनाए रखने के लिए जो आवश्यक है वो यही आवश्यक है कि हमें कैसी भी परिस्थिति में हमारे मन को शांत, शक्तिशाली और सकारात्मक बना के रखना है। कैसी भी परिस्थिति में, नॉर्मल स्थिति में तो हम होते हैं, परंतु जब परिस्थिति ऐसी कोई आई उस परिस्थिति में भी हमें अपने मन को ऐसा रखना, ऐसी ताकत को जमा करना, उसके लिए ये आवश्यक है दोनों बातें कि हम बाबा को साथी बना के रखें और साक्षी भाव से जीना सीखे। जितना आप साक्षी भाव से जीना सीखेंगे उतना मन की शक्ति बढ़ती जाएगी। अगर साक्षी नहीं है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत है, वही वस्तु या व्यक्ति याद आता रहेगा। अगर साक्षी है तो फुल स्टॉप लगा सकते हैं, बाबा तो हमेशा कहते फुल स्टॉप लगाओ, पर लगे तब जब हमारी स्थिति साक्षी स्थिति हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन में हम आते हैं तो बाबा की प्रेजेंस हम सबको इतना गहरे साथ का अनुभव कराती है कि आत्मा में बहुत ताकत भर जाती है। जैसे पूरे साल में एक बार बाबा से मिलने आते हैं, साल भर की ताकत भर जाती है, और वो भरते भरते साल भर की नहीं परंतु कितनी भरती है, कल्प की ताकत भर जाती है ना। तो इसीलिए मैं समझती हूं कि ये प्रोसेस को इतना फास्ट नहीं है, स्लो प्रोसेस है, परंतु ये याद रखना है कि बाबा ने हमें हाथ पकड़ के अपना बना लिया, अभी हमें बाबा का हाथ पकड़ के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाना है ना। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, इन्हीं बातों को आप थोड़ा मेमोराइज करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे हमें अपनी स्थिति को साथी और साक्षी स्थिति बनाना है।
है।